नमस्कार श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे और ये समय है आपके अपने खेल खबरों के कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
धन्यवाद सिद्धार्थ जी।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। एशियाई बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में जगह बनाई। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की विश्व की नंबर एक जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को $50,000 दिए जाएंगे। टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने निजात आबासोव को हराया और नीरज चोपड़ा 18 जून को फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित होने वाले पावो नुर्मी गेम्स 2024 में हिस्सा लेंगे। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। और इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है और अभी की जो ताजा स्थिति है 12 ओवर का खेल यानी 11 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 2 विकेट पर 86 रन का स्कोर है राजस्थान रॉयल्स का। और इस समय जिस तरह का ये गेम हो रहा है, हालांकि आज मलय अगर हम देखें तो बारिश के कारण मैच थोड़ा सा टॉस देर से हुआ और मैच के में इस समय जो स्थिति है बारिश के बाद जो पिच की स्थिति है और जो इस समय करंट स्कोर है 11 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट पर 87 रन राजस्थान रॉयल्स का, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हालांकि अगर हम खिलाड़ियों के उस पर जाएं तो शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाकर टीम का साथ दिया। जोस बटलर ने 8 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा संजू सैमसन फिलहाल नाबाद हैं, 23 रन बना चुके हैं। रियान पराग जो है वो 31 रन बना चुके हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 2 विकेट पर 88 रन?
देखिए, जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। आप जानते हैं कि राशिद के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। एक मनोवैज्ञानिक दबाव राशिद बनाते हैं और जो उनके सबसे जिसको कही आत्मीय शिकार हैं वो हैं जॉस बटलर साहब, जो 8 ओवर में 3 बार उनकी गेंदों पर आउट हो चुके हैं। और आज भी वही हुआ कि बटलर को उन्होंने आउट करा दिया, तिब्बतिया ने कैच लपका और 10 गेंदों में 8 रन बनाकर बटलर पे गेंद वापस हो गए। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद थी कि जो जलवा उन्होंने दिखाया था इससे पहले उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 0-1, 10-24 इस तरह से रन उन्होंने पहले बनाए थे, आज फिर 24 रनों पर आउट हुए। तो उनसे भी एक बड़ी पारी की उम्मीद थी जो कि आज देखने को नहीं मिली। वो उम्मीद निराशा में बदली क्योंकि 19 गेंद उन्होंने खेले, 24 रन बनाए। फिलहाल संजू सैमसन टिके हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक चोट को संभाल कर रखने में इनको महारत हासिल है। 15 गेंदों में 23 रन इन्होंने बनाए हैं, जो अभी वर्तमान रनों की गति पर आप नजर डालें तो 7.5 रन के आसपास प्रति ओवर का जो रन रेट है ये बहुत अधिक नहीं है। हालांकि अगर आप देखें राजस्थान रॉयल्स अभी शीर्ष पे है, हार का मुंह नहीं देखा अभी तक उन्होंने आईपीएल में और ये एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, मगर कांटे की टक्कर की उम्मीद पहले भी थी और अभी भी है। अब देखना यह है कि किस प्रकार से जो इनके गेंदबाजों ने उमेश यादव ने जिस प्रकार से आउट किया यशस्वी जायसवाल को, बहुत बड़ा झटका लगा यहां पे राजस्थान रॉयल्स को। अब देखना है कि जो इनके बल्लेबाज हैं वो कितना रन बना पाते हैं और उसके बाद फिर गेंदबाजों पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के साथ समस्याएं हैं। आप जानते हैं उनके कप्तान छोड़कर जा चुके हैं हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर के फिटनेस पर भी सवालिया निशान लगा रहा है।
आपने अगर हम देखें तो राशिद खान की आज बात की और अगर उनकी 3 ओवर में 13 रन दिए हैं, 1 विकेट भी लिए हैं, 4.33 की उनकी इकोनॉमी रही है, काफी अच्छा प्रदर्शन और थोड़ा सा मुश्किल साबित हुए हैं और उन्होंने कहीं न कहीं राजस्थान रॉयल्स की जो गति है उसको धीमी की है।
बिल्कुल, देखिए जहां तक راشد کا سوال ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا
جی
کہ بٹلر کے سامنے, خاص کر بٹلر نے ابھی تک ان کے خلاف اس آئی پی ایل میں نہ تو ایک چوکا جڑا ہے نہ ایک چھکا جڑا ہے.
جی
اور آٹھ, اس سے آج کے میچ سے پہلے آٹھ بار میں تین بار راشد کے شکار ہوئے تھے بٹلر.
جی
تو اس پرکار راشد جو ہیں وہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئے ہیں, ریان پراگ کے سامنے بھی بہت کارگر سدھ ہوئے ہیں. اور یہ جو لیگ سپنرز کے لیے یہ سیزن پورا ہے, یہ بہت ہی اچھا نہیں مانا جاتا ہے, مانا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پانچ گیمز میں پانچ وکٹ لے کر انہوں نے جو کیا ہے وہ راجستھان رائلز کے خلاف جو ان کا ریکارڈ رہا ہے, راشد کا ویکتیگت ریکارڈ جو رہا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے. اور راشد سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ گجرات کی ٹیم کو, گجرات ٹائٹنز کو ایک زبردست سنبل پردان کریں گے اور آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں گے. اور انہوں نے اب تک ایسا ہی کچھ کیا ہے. ابھی انہیں دو اوور اور ڈالنے ہیں, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے.
بالکل, 12 اوور اور 3 گیند کا کھیل سماپت ہو چکا ہے. 2 وکٹ پر 97 رن بنا چکے ہیں راجستھان رائلز, ایک دم سینکڑے کے قریب پہنچنے والے ہیں. اور فی الحال اگر ہم دیکھیں تو راجستھان کے حوصلے بلند ہیں, اپنے سبھی 4 میچ جیت کر 8 انک کے ساتھ وہ شیش پر ہیں. وہیں گجرات 5 میں سے 2 میچ جیت کر 4 انکوں کے ساتھ 7ویں استھان پر ہیں. تو فی الحال یہ چیز تو بات رہی ابھی کے میچ کی. اور اگر ہم کل کے میچ پر اگر ایک نظر ڈالیں جلدی سے, تو کل چندی گڑھ کے مہاراجا یادویندر سنگھ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد نے رومانچک مقابلے میں پنجاب کنگز کو 2 رن سے ہرایا. تو کافی رومانچک مقابلہ تھا. کیا آپ نتیش ریڈی کی بات کر رہے تھے, کس طریقے سے یہ پورے میچ کے اوپر آپ کی ٹپنی چاہیں گے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ششانک اور آشوتوش اس بار پھر بیڑا پار کرا دیں گے ان کا, کیونکہ جس پرکار سے انہوں نے انتم اوور میں رن چھکوں کی برسات کی تھی, حالانکہ 2 رن کم رہ گئے, وہ بہت ہی شاندار. مگر ریڈی نے جس پرکار سے اپنی ٹیم کو بچایا, اپنی ٹیم کو ایک مشکل سے, ایک آفت سے باہر نکالا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جب انتم گیند انتم اوور ہو رہا تھا تو پہلی گیند, پہلا جو کیچ ڈراپ ہوا آشوتوش کا, وہ نتیش کے ہاتھوں ہوا تھا. اور نتیش ریڈی بہت دکھی ہوتے, لیکن جو 37 گیندوں میں انہوں نے 64 رنوں کی شاندار پاری کھیلی, وہ ایک انہوں نے جو ایک چھوٹا سا ایج دیا, 182 رنوں کا جو ایک اسکور کھڑا کیا, اس میں ان کی مہتوپورن بھومکا رہی اور اس کو جیت میں اہم مانا جا سکتا ہے.
جی بالکل. اور فی الحال ممبئی میں کل آئی پی ایل میں ممبئی انڈینز کا سامنا رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا, اس پر بھی ہماری نظر رہے گی. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو 8ویں اور 9ویں جو باٹم ٹیمز ہیں ان کے بیچ مقابلہ ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے, آپ کی سنکھت پرتکریا؟
دیکھیے, دونوں کٹر پرتدوندی ہیں, دونوں اس سمے گھائل شیر کی طرح آپس میں لڑنے کو تیار ہیں. ایک نے 5 میچ کھیلے ہیں تو 4 ہارا ہے, دوسرے نے 4 کھیلے ہیں, 3 ان میں سے ان 3 میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ ایک ایسا میچ ہے جو وراٹ کوہلی, آپ نے دیکھا شتک جڑنے کے بعد بھی ان کی ٹیم میچ نہیں جیت پائی. ادھر روہت 49 رن بنا کر انہوں نے دلی کیپٹلز کو جب ہرایا تو انہوں نے جیت حاصل کی. تو بہت ہی کڑا سنگھرش ہوگا, اور یہ میچ یہ طے کرے گا کہ رائل چیلنجرز بنگلور جنگ سے باہر نکل پاتا ہے کہ نہیں, جب وہ لگاتار ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے اسے ابھی تک.
جی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور. چین کے نینگ بو میں ہو رہی ایشیائی بیڈمنٹن پرتیوگتا کی مہیلا سنگلس میں پی وی سندھو نے ملیشیا کے گو جن ویٹ کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. حالانکہ پروش سنگلس کی بات کریں تو لکسین اور کدامبی شریکانت پہلے ہی دور میں ہار کر باہر ہو گئے. کس طریقے سے اس پردرشن کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, پی وی سندھو نے زبردست واپسی کے سنکیت کیے ہیں. ان کو چوٹ لگنے کے بعد جس پرکار سے انہوں نے ابھی کورٹ پر اپنی واپسی کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ پی وی سندھو اولمپک کے پہلے اپنے اسی فارم کو دوبارہ واپس پانا چاہتی ہیں جس فارم کے لیے انہیں جانا جاتا رہا ہے. اور جو انہوں نے جیت حاصل کی آج گان جن وئی کے خلاف 18-21-21-14-21-19 سے, یہ جیت بھی بہت قابل تعریف مانی جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے سندھو اپنے اس ملیشیائی پرتدوندی سے جب پچھلی بار ملی تھی سدیرمان کپ میں, تو انہوں نے وہاں ہار کا منہ دیکھا تھا ان کے سامنے. حالانکہ ابھی تک 4-1 سے ان کا ریکارڈ آگے ہے, لیکن سندھو کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جس پرکار سے انہوں نے واپسی کی ہے, اب امید کی جا سکتی ہے کہ پیرس آتے آتے وہ پھر سے اپنے چرم پر ہوں گے.
جی بالکل, ایک بہتر پردرشن کی امید کر رہے ہیں. मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की विश्व की नंबर वन जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें प्री क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के मेट पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो एरेवलो की जोड़ी ने 3-6, 6-7 से पराजित किया। काफी उम्मीदें थी लेकिन आज निराशा हाथ लगी।
बिल्कुल, देखिए रोहन बोपन्ना और मैट एब्डन जिस फॉर्म में हैं और जिस तरह से उन्होंने साल की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और बोपन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि 44 वर्षों की उम्र में भी 18 वर्षों की टांगों की मजबूती और बाहों की मजबूती देखनी हो तो रोहन बोपन्ना की ओर नजर उठाकर देखिए। और आज ऐसा लग रहा था, लेकिन आज उनके सामने जो जोड़ी थी वो भी कभी विश्व नंबर एक जोड़ी रह चुकी है, सिद्धार्थ जी, तो ऐसा नहीं था, मुकाबला आसान था, लेकिन मैं तो इसे शॉक डिफीट कहूंगा। एक ऐसी हार जिससे इनको अचानक बहुत धक्का लगा होगा, कभी कभी ऐसी हार भी आगे जीत में काम आती है।
और पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सुमित नागल का दूसरे दौर में डेनमार्क के होलगर रूने से सामना होगा। इससे पहले रविवार को नागल 42 साल बाद इस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इससे पहले 1982 में रमेश कृष्ण ने मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी। फिलहाल इस मैच पर भी सबकी नजर रहेगी।
बिल्कुल नजर रहेगी। 1977 में विजय अमृतराज, 1982 में रमेश कृष्ण और अब सुमित नागल। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने मास्टर्स 1000 का कोई मैच जीता है, जो इन्होंने पहले राउंड का मैच जीता। और ये अगला मुकाबला जो इनका है वो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के सामने है। लेकिन टॉप 50 के किसी खिलाड़ी को हरा देना अपने आप में एक बड़ी बात होती है।
और इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को $50,000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही विश्व एथलेटिक्स ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। तो अब एथलेटिक्स में जब आप $50,000 की बात करेंगे गोल्ड जीतने पर, तो ये खिलाड़ियों के लिए कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन होगा।
बिल्कुल प्रोत्साहन होगा, और खासकर ऐसे देशों में जहां एथलेटिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए, जब आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ होते हैं तो आपका दिल और दिमाग दोनों पदक तालिका और पदक मंच तक रहे, तो उससे अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है, और ये अच्छी बात है। मैं तो इसके पक्ष में हूं।
बात करते हैं शतरंज की। कनाडा के टोरंटो में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश पांचवें दौर में निजात आबासो पर जीत हासिल करने में सफल रहे। लगभग 6 घंटे तक चले बेहद रोमांचक और मैराथन मुकाबले में गुकेश ने 5 राउंड के बाद जीत दर्ज की। 17 वर्ष के गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उम्र कम है और जोश मलय ज्यादा है,
और पूत के पांव पालने से ही दिखने लगे थे। 7 वर्ष की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था, उसके बाद लगातार अंडर 9, अंडर 7 से शुरू किया, अंडर 9, अंडर 12, अंडर 15, और फिर आप जानते हैं कि 17 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। और जिस प्रकार से खेल रहे हैं, कार्लसन को हरा चुके हैं, यहां ज्वाइंट लीडर हैं इस पूरी प्रतियोगिता में, तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल से शतरंज के लिए बहुत अच्छा संकेत है भारतीय शतरंज के लिए।
नीरज चोपड़ा 18 जून को फिनलैंड के तुर्कू में आयोजित होने वाले पावो नुर्मी गेम्स 2024 में हिस्सा लेंगे। हर साल गर्मी में आयोजित किए जाने वाले पावो नुर्मी गेम्स फिनलैंड की टॉप ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को पहली बार 1957 में आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता में नीरज को जर्मनी के 19 वर्षीय मैक्स डेहनिंग से कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछली बार नीरज ने इसमें रजत पदक जीता था, और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं नीरज से?
देखिए, 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता था पावो नुर्मी गेम्स में, और अब इनसे उम्मीद की जाती है कि बहुत अच्छा सीजन शुरू होने वाला है और इसी सीजन की शुरुआत के साथ वो पेरिस तक जाएंगे।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मलय, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभरात्रि।